नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से उत्पन्न हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात केंद्रीय रक्षा समिति की बैठक करेंगे। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले को देखते हुए मध्य पूर्व में स्थित भारतीय दूतावासों में भारतीय नागरिकों से सावधानी बरतने का केंद्र सरकार ने परामर्श जारी किया। रंगों के त्योहार होली को लेकर बाजारों में रौनक, अबीर, गुलाल, पिचकारी, कपड़ों और मिठाइयों की बिक्री बढ़ी। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका और इसराइल के हवाई हमलों में मौत हो गई है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने भी खामेनेई की मौत की पुष्टि की है। खबरों के अनुसार इन हमलों में ईरान के लगभग 40 अधिकारी भी मारे गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ईरान में 40 दिनों की राजकीय शोक की घोषणा की गई है।
खबरों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हवाई हमले के बाद हुई है, जिसमें ईरानी सैन्य और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया गया। एक वरिष्ठ इसराइली अधिकारी के अनुसार खामेनेई का शव बरामद किया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था, चिमेशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया और पूरे क्षेत्र में व्यापक जवाबी कार्रवाई हुई। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के कार्यालय के पास तेहरान समेत कई शहरों में विस्फोटों की खबर मिली। ईरान सरकारी मीडिया ने कम से कम 200 से अधिक लोगों की मौत और 700 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना दी है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
विदेश मंत्रालय ने भारत में रह रहे ऐसे सभी विदेशी नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है जो अपने वीजा के विस्तार या अपने ठहराव को नियमित करना चाहते हैं। यह परामर्श पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रम को देखते हुए जारी किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे नागरिकों को नजदीकी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से उत्पन्न हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात केंद्रीय रक्षा समिति की बैठक करेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इस बैठक में मध्य पूर्व के हालात पर चर्चा होगी। पश्चिम एशिया में भारतीय दूतावासों ने भारतीय नागरिकों से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले को देखते हुए परामर्शों का पालन करने की अपील की है। इन दूतावासों ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अत्यधिक सावधानी बरतें और अनावश्यक आवाजाही से बचें। दूतावासों ने किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
इसराइल में भारतीय दूतावास +972547520711 पर संपर्क किया जा सकता है। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +98993217939। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के भारतीय दूतावास का टोल फ्री नंबर 800046342। सऊदी अरब के रियाद स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है 00966114884697। कतर की राजधानी दोहा स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है 00974556475002। फलस्तीन के मामलों में रामल्ला स्थित भारतीय प्रतिनिधि कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क के लिए ईमेल है community.kuwait@meea.gov.in और हेल्पलाइन नंबर है +96565501946। बहरीन स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है 00973394108071। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रा परामर्श जारी किया गया है। परामर्श में कहा गया है कि पश्चिम की ओर जाने वाली उड़ानों में देरी हो सकती है या समय में बदलाव हो सकता है। यात्रियों को उड़ान के बारे में ताजा स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.newdelhiairport.in देख सकते हैं। इधर ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत के बाद भारत में कश्मीर, लखनऊ, मुंबई और कर्नाटक में शिया समुदाय के लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली में ईरान का सांस्कृतिक भवन के बाहर लोगों ने खामेनेई के निधन पर बैठक की। राष्ट्रीय जनता दल ने भी ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले को पूरी मानवता के विरुद्ध हमला करार दिया है। राजद के सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि भारत ने अपना एक दोस्त खो दिया है। इधर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है। श्री पासवान ने कहा कि सिर्फ सार्थक बातचीत से ही सभी मुद्दों का हल निकाला जा सकता है।
इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत की यही भूमिका है कि अपने पुराने दोस्तों के साथ साथ अपने नए दोस्तों को भी साथ लेकर चलें। हम लोग कभी भी युद्ध के पक्षधर नहीं रहे हैं, हम लोग हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं। जितने भी पक्ष इसमें इन्वॉल्व हैं, बैठकर सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पश्चिम एशिया में तनाव के मद्देनजर 2 मार्च से प्रस्तावित 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। यह फैसला बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूदा परिस्थिति के मद्देनजर लिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि स्थिति के आकलन के बाद परीक्षा की नई तारीख घोषित की जाएगी। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश में अब आवश्यकता से अधिक बिजली उपलब्ध है। आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में विद्युत मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए 30 गीगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों के दौरान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 35% से अधिक की कमी आई है। पूर्वी चंपारण के कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में समेकित कृषि प्रणाली मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन विषय को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा जैसी योजनाओं की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि अब बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है। श्री सिंह ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज 75वां जन्मदिवस है। उनके जन्मदिन पर पटना समेत पूरे राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जदयू कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। पटना के रविन्द्र भवन में मुख्यमंत्री के जीवन और संघर्ष पर आधारित कॉफी टेबल बुक मीरे कारवा का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले 51 लाख बच्चों को पोशाक वितरित किए गए। जीविका दीदियों द्वारा तैयार पोशाक वितरण अभियान की शुरुआत पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर और बगहा से की गई। वहीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी सरकारी आवास में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिवस पर बधाई दी है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री को जन्मदिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि उनकी अध्यक्षता में एनडीए सरकार बिहार का तेजी से विकास कर रही है।
मैं नीतीश जी को जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामना देता हूं, क्योंकि बिहार के लिए नीतीश जी ने जो 20 साल में काम किया है एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा।
वहीं लोजपा रामविलास सहित अन्य दलों की ओर से मुख्यमंत्री को जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री के दीर्घायु जीवन की कामना की है।
हाँ, मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ रहें और जनता की सेवा निरंतर इसी तरह से करते रहें, इस बात की प्रार्थना ईश्वर से हम करते हैं।
इधर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री को जन्म दिवस की शुभकामना दी है।
तो चाहते हैं भाई वो स्वस्थ रहे, उनको जन्मदिन की जो है मुबारकबाद हम देते हैं और वो स्वस्थ रहे।
रंगों के त्योहार होली को लेकर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश के बाजारों में चहल पहल देखने को मिल रही है। राज्य में होली का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा। बाजारों में रंग गुलाल, पिचकारी, कपड़े, मेवा की खरीदारी खूब हो रही है। खासकर बच्चों के लिए कार्टून डिजाइन वाली पिचकारियां और इको फ्रेंडली रंग लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार इस बार प्राकृतिक और हर्बल रंगों की मांग पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। लोग त्वचा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रंगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। मिठाई बनाने वाले कारीगर भी होली के दौरान गुजिया, नमकीन और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों को तैयार करने में व्यस्त हैं। कपड़ों की दुकानों में पारंपरिक परिधानों की बिक्री भी तेज हो गई है। होली के अवसर पर सुरक्षित और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग ने परामर्श जारी किया है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मरों और बिजली की लाइनों के नीचे या उनके आसपास होलिका दहन नहीं करें। परामर्श में कहा गया है कि आग की लपटों से बिजली के तार और केबल के जलने या टूटने की गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऊर्जा सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने अधिकारियों और अभियंताओं को निर्देश दिया है कि होली के दौरान किसी भी सूरत में अनावश्यक बिजली कटौती न हो और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। होली और रमजान को लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पटना प्रक्षेत्र के आईजी जितेंद्र राणा ने संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उन क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात करें, साथ ही ऐसे इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी का निर्देश भी दिया गया है। आईजी ने वाहनों की जांच में भी तेजी लाने को कहा है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत का सामना आज वेस्ट इंडीज से हो रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। ताजा समाचार मिलने तक वेस्ट इंडीज ने 7 ओवरों में बिना विकेट खोए 61 रन बना लिए हैं। भागलपुर पुलिस ने पीएम किसान योजना का पैसा लाभुकों के खाते से अवैध रूप से निकासी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के वारिसलीगंज मोहल्ला से गिरफ्तार किया है। जहानाबाद कृषि कार्यालय में 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला आज सम्पन्न हो गया। इस मेले में लगभग 35 लाख रुपए के कृषि मशीनों की बिक्री हुई। सहरसा के नौहट्टा थाना क्षेत्र के पिपराही गांव से गायब हुई 5 नाबालिग बच्चियों को रेल पुलिस की मदद से लखनऊ से सुरक्षित बरामद किया गया। पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र के दाल कोला चेक पोस्ट पर जांच के दौरान पुलिस ने एक वाहन से 1,20,00,000 रुपए से अधिक के मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। नवादा जिले के कौवाकोल थाना क्षेत्र के दनिया जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर 750 लीटर महुआ शराब बरामद की है। वहीं बक्सर के सिकरौल थाना क्षेत्र के निहालपुर से 1300 लीटर से अधिक विदेशी शराब जब्त की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से उत्पन्न हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात केंद्रीय रक्षा समिति की बैठक करेंगे। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले को देखते हुए मध्य पूर्व में स्थित भारतीय दूतावासों में भारतीय नागरिकों से सावधानी बरतने का केंद्र सरकार ने परामर्श जारी किया। रंगों के त्योहार होली को लेकर बाजारों में रौनक, अबीर गुलाल पिचकारी कपड़ों और मिठाइयों की बिक्री बढ़ी। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज से हो रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।